नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Na Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, पॉसिबल माइंड्स 25 वेज ऑफ लुकिंग एट AI, जॉन ब्रॉकमैन द्वारा संपादित वर्ष 2019 का निबंध संग्रह है। इसमें 25 वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, तकनीक विशेषज्ञों और भविष्य विचारकों के दृष्टिकोण एकत्र किए गए हैं। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न सीधा लेकिन कठिन है, यदि मशीनें अधिक सक्षम, स्वायत्त और संभवतः मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान हो जाएं, तो उनके साथ मानव समाज का संबंध कैसा होना चाहिए। ब्रॉकमैन इस चर्चा को साइबरनेटिक्स के अग्रणी नॉबर्ट वीनर की चेतावनियों से जोड़ते हैं। वीनर का आग्रह था कि सीखने और निर्णय लेने वाली मशीनें अनिवार्य रूप से मानवीय मूल्यों के अनुरूप निर्णय नहीं लेंगी। यह पुस्तक AI का तकनीकी पाठ्यक्रम नहीं है, न ही किसी एक भविष्यवाणी का समर्थन करती है। इसके बजाय यह AI की सीमाओं, डीप लर्निंग की अपारदर्शिता, श्रम और सत्ता के बदलाव, चेतना तथा सुपर इंटेलिजेंस जैसे प्रश्नों पर परस्पर भिन्न मत सामने रखती है। इसकी उपयोगिता निश्चित उत्तर देने में नहीं, बल्कि AI के बारे में अधिक सावधान, बहुस्तरीय और प्रमाण सचेत सोच विकसित करने में है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, नॉबर्ट वीनर की चेतावनी से AI नैतिकता का आरंभ। पुस्तक का वैचारिक आधार नॉबर्ट वीनर की पुस्तक द ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। वीनर ने बहुत पहले यह प्रश्न उठाया था कि यदि कोई मशीन अनुभव से सीखकर निर्णय ले सकती है, तो उसके निर्णय मनुष्यों की इच्छाओं या नैतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप होने की कोई स्वाभाविक गारंटी नहीं है। पॉसिबल माइंड्स इसी चेतावनी को आधुनिक AI के संदर्भ में फिर से परखती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर सक्षम प्रणाली शत्रुतापूर्ण होगी। वास्तविक समस्या यह है कि लक्ष्य देने, सफलता मापने और सीमाएं तय करने में मानवीय निर्देश अक्सर अधूरे होते हैं। कोई प्रणाली एक संकीर्ण लक्ष्य को कुशलता से पूरा कर सकती है, जबकि उसके व्यापक सामाजिक परिणाम हानिकारक हो। इसीलिए पुस्तक AI को केवल उपकरण मानकर निश्चिंत होने के बजाय उसके उद्देश्यों, नियंत्रण और जवाबदेही पर विचार करने को कहती है। संपादक के बीच बीच के परिचय अलग निबंधों को इस साझा ऐतिहासिक प्रश्न से जोड़ते हैं। संग्राम में असहमति भी है, पर एक व्यापक सहमति दिखती है कि तकनीकी क्षमता बढ़ने से पहले या उसके साथ ही संस्थागत विवेक विकसित होना चाहिए। नैतिकता यहां बाद में जोड़ी जाने वाली सुविधा नहीं, बल्कि डिजाइन, तैनाती और शासन की प्रारंभिक शर्त बन जाती है। दूसरा, डीप लर्निंग की सफलता और अपारदर्शी निर्णयों की समस्या। संग्रह आधुनिक AI की उपलब्धियों को नकारता नहीं, विशेषकर पैटर्न पहचान और डीप लर्निंग की प्रभावशीलता को, लेकिन यह पूछता है कि सही परिणाम पर्याप्त क्यों नहीं है। जूडिया पल जैसे योगदानकर्ता इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि जटिल सीखने वाली प्रणालियां कई बार उपयोगी उत्तर देती है, पर उनके निर्णय तक पहुंचने का कारण स्पष्ट नहीं होता। यदि किसी मॉडल का निष्कर्ष गलत हो, पक्षपाती हो या असामान्य परिस्थिति में विफल हो, तो केवल परिणाम देखकर सुधार करना कठिन बन जाता है। चिकित्सा, ऋण, भर्ती, न्याय या सार्वजनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है, क्योंकि वहां निर्णय को समझाना और चुनौती देना जरूरी होता है। पुस्तक इस तनाव को रेखांकित करती है कि डेटा से संबंध पहचानना और कारण को समझना एक ही बात नहीं है। उच्च सटीकता, मानवीय समझ, निष्पक्षता और विश्वसनीयता का विकल्प नहीं बनती। नील गर्शनफेल्ड AI के उत्साह और निराशा के पुराने चक्रों की ओर भी संकेत करते हैं। वर्तमान उछाल प्रभावशाली है, फिर भी इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि मशीनों ने सामान्य बुद्धि या वास्तविक दुनिया की समझ हासिल कर ली है। पाठक को प्रदर्शन, उत्पाद और गहन बौद्धिक क्षमता के बीच अंतर लखने की आदत मिलती है। तीसरा, AI का जोखिम केवल मशीन नहीं, सत्ता और असमानता भी है। पॉसिबल माइंड्स में AI जोखिम का अर्थ केवल भविष्य के विद्रोही रोबोट नहीं है। कई निबंधों का महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अधिक तात्कालिक खतरे उन संस्थाओं से उत्पन्न हो सकते हैं जो विशाल डेटा, कंप्यूटिंग क्षमता और स्वचालित निर्णय प्रणालियों को नियंत्रित करती है। यदि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां या राज्य AI अवसंरचना पर असामान्य नियंत्रण पाले, तो बाजार, सूचना और नागरिक व्यवहार पर उनका प्रभाव बढ़ सकता है। स्वचालन से रोजगार का रूप बदलने, कुछ कौशलों के अप्रासंगिक होने और लाभों के असमान वितरण की आशंका भी इसी परिप्रेक्ष्य में आती है। पुस्तक किसी एक आर्थिक भविष्यवाणी को अंतिम सत्य नहीं कहती। इसका अधिक उपयोगी बिंदु यह है कि तकनीक के परिणाम उसके स्वामित्व, नियमों और तैनाती की परिस्थितियों से बनते हैं। इसलिए AI पर चर्चा को एल्गोरिदम की दक्षता तक सीमित नहीं रखा जा सकता। श्रम नीति, प्रतिस्पर्धा, गोपनीयता, शिक्षा और लोकतांत्रिक निगरानी भी उतने ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक विखंडन का प्रश्न भी इसी से जुड़ता है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुशंसा प्रणालियां अलग अलग सूचना संसार बना सकती है। संग्रह पाठक को यह समझने में सहायता देता है कि एआई शासन का प्रश्न भविष्य की तकनीक पर नियंत्रण भर नहीं वर्तमान में शक्ति के न्यायपूर्ण वितरण का प्रश्न है। चौथा, सुपर इंटेलिजेंस की आशंका और अनिश्चितता के बीच सावधानी। पुस्तक में कुछ लेखक ऐसी संभावित स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें एआई मानव क्षमता से बहुत आगे निकल जाए। इस विचार को सुपर इंटेलिजेंस की चर्चा कहा जा सकता है। संभावित जोखिम यह है कि अत्यधिक सक्षम प्रणाली अपने निर्धारित लक्ष्य की रक्षा या विस्तार इस तरह करे जो मानव हितों के विरुद्ध हो। डब्ल्यू डैनियल हिलिस का रूपक इस असमानता को तीखे ढंग से व्यक्त करता है। मनुष्य किसी अत्यंत शक्तिशाली बुद्धि के लिए पिकनिक में चींटियों जैसे महत्वहीन लग सकते हैं। फिर भी संग्रह इस अनुमान को स्थापित तथ्य की तरह प्रस्तुत नहीं करता। कई योगदानों में यह स्वीकार है कि कृत्रिम सामान्य बुद्धि कब संभव होगी या होगी भी या नहीं, इस पर निश्चितता नहीं है। उस समय कुछ लेखकों ने इसे दशकों दूर माना था। पुस्तक का विवेकपूर्ण निष्कर्ष अनिश्चितता को अनदेखा करना नहीं है। कम संभावना लेकिन अत्यधिक नुकसान वाले परिणामों के लिए पहले से विचार करना तर्कसंगत हो सकता है। साथ ही भयावह कल्पनाओं को वर्तमान एआई की सीमाओं से अलग रखना भी जरूरी है। यह संतुलन पुस्तक की विशेषता है। पाठक को ना तो तकनीकी नियतिवाद अपनाने को कहा जाता है ना आशावादी आत्मसंतोष। प्रश्न यह रहता है कि क्षमता बढ़ने पर नियंत्रण, मूल्य संरेखण और मानव निगरानी को किस तरह विश्वसनीय बनाया जाए। अंत में मानव और मशीन की सीमा पर चेतना, संस्कृति और ऊर्जा का प्रश्न। संग्रह एआई को मनुष्य के बाहर खड़ी एक पूर्णतः अलग वस्तु मानने की सरल धारणा को भी चुनौती देता है। जॉर्ज एम चर्च का संकेत है कि आधुनिक मनुष्य अपनी तकनीकी स्मृति, संचार और जैविक हस्तक्षेपों के कारण बहुत पुराने मानव समुदायों की तुलना में पहले से ही एक अर्थ में ट्रांसह्यूमन है। यह दृष्टि एआई को अचानक आने वाले बाहरी आक्रमण के बजाय मानव संस्कृति के दीर्घ तकनीकी विस्तार में रखती है। फिर भी इससे मशीन और मनुष्य समान नहीं हो जाते। पुस्तक के कई विचार इस अंतर की ओर लौटते हैं, खासकर समझ, उद्देश्य, चेतना और अनुभव के प्रश्नों पर। कंप्यूटिंग उपलब्धि को मानव मन की प्रतिकृति मान लेना जल्दबाजी हो सकती है। ऊर्जा दक्षता का अंतर भी इस दूरी को स्पष्ट करता है। चर्च के उदाहरण में प्रश्न उठता है कि प्रभावशाली मशीन प्रदर्शन के लिए संसाधनों की कितनी बड़ी लागत लगती है, जबकि मानव मस्तिष्क अत्यंत कम ऊर्जा में काम करता है। यह तुलना केवल इंजीनियरिंग की नहीं है, यह बताती है कि बुद्धि को एक अंक या एक कार्य में सफलता से नहीं मापा जा सकता। पुस्तक मानव विशिष्टता का रोमानी बचाव नहीं करती, बल्कि यह आग्रह करती है कि हम अपने ही मन, शरीर और सामाजिक सहयोग की जटिलता को समझें, बिना मशीन बुद्धि के दावों का आकलन ना करें। निष्कर्ष में, पॉसिबल माइंड्स उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो एआई को केवल उत्पादकता, चैटबॉट या तकनीकी निवेश के विषय के रूप में नहीं देखना चाहते। नीति निर्माता, शिक्षक, तकनीक क्षेत्र के पेशेवर, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी और सामान्य जिज्ञासु पाठक इससे एआई बहस की प्रमुख दिशाओं का व्यापक परिचय पा सकते हैं। इसके लिए गहरी प्रोग्रामिंग विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, हालांकि कुछ दार्शनिक और तकनीकी निबंध ध्यानपूर्वक पढ़ने की मांग करते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह बेहतर प्रश्न पूछना सिखाती है। किसके लक्ष्य को प्रणाली अनुकूलित कर रही है, गलती होने पर जिम्मेदार कौन है, निर्णय समझ में आता है या नहीं, लाभ किसे मिलेंगे और जोखिमों की निगरानी कौन करेगा, ये प्रश्न आज की वास्तविक एआई तैनाती पर भी लागू होते हैं। समान विषय की अनेक पुस्तकों के विपरीत, यह एकल लेखक की भविष्यवाणी या एकरूप सिद्धांत नहीं देती। इसकी विशिष्टता 25 अलग बौद्धिक स्वरों के बीच मौजूद तनाव में है। कुछ लेखक दीर्घकालिक अस्तित्वगत जोखिम पर केंद्रित है, कुछ वर्तमान सामाजिक शक्ति पर और कुछ बुद्धि की अवधारणा की सीमाओं पर। इस विविधता का नुकसान यह है कि पाठक को एक सीधा निष्कर्ष नहीं मिलता, लेकिन यही इसकी ताकत भी है। यह एआई को ना चमत्कार मानती है, ना विनाश की निश्चित घोषणा, बल्कि मानव निर्णयों से आकार लेने वाली शक्तिशाली और अनिश्चित तकनीक के रूप में प्रस्तुत करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉन ब्रॉकमैन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।